नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम आप सभी वैष्णव भक्तों को मेरा प्रणाम और हरे कृष्ण। दूसरा मेरा सौभाग्य है कि इतने परम वैष्णव, परम रसिक आचार्य और भगवान के शुद्ध भक्त कमल मंजरी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी और स्वयं श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित, उनका गुणगान करने का मेरे को अवसर मिल रहा है, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो जैसा उनके बारे में बताया गया है, जैसा है जोनस महानिधि स्वामी महाराज जी ने अपने ग्रंथ में समाधि घोड़ीय वैष्णव चरितामृत में बताया है और भी थोड़ा सा, वैसा ही हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। और मेरे को इनके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, मैं जैसा आचार्यों ने बता रखा है उसको बता रहा हूँ केवल, बस एज इट इज। हम तो घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुए थे। भक्ति की ABCD भी हमें पता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद गुरुदेव गुरु गौरांगी की असीम कृपा से हम लोग ये बना बनाया जो सब कुछ निरूपण किया हुआ है, आचार्यों ने मेहनत कर रखी है, सभी परम वैष्णव के चरित्र का वर्णन किया है, उसको हम केवल दोहराएंगे बस। बाकी मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं कुछ गुणगान कर पाऊँ। तो भजन जो था इसका अर्थ इस प्रकार से है, अतिशय करुणा करके जो प्रेम धन को लाए थे वे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए, यानी कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहाँ चले गए, श्रील गदाधर पंडित कहाँ चले गए, कहाँ मेरे वे स्वरूप दामोदर हैं, कहाँ वे रूप गोस्वामी जी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी जी हैं, कहाँ वे पतित पावन रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, कहाँ मेरे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, कहाँ मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी हैं, तथा कहाँ मेरे वे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हैं, ये सभी के सभी गौरजन एक साथ कहाँ चले गए। तो ये भक्त का विरह है कि इन सभी भक्तों का उनको विरह हो रहा है, और यही विरह वास्तव में सबसे बड़ा विरह है। सबसे बड़ा दुख क्या है, गौरांग महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा था कि सबसे दुख मध्य जो सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा दुख यही है कि जब भक्तों का संग ना हो, जब भक्तों के संग में कृष्ण कथा ना हो। संग भी है लेकिन संग में क्या करना है, कृष्ण कथा करना है, तो ये सबसे बड़ा दुख है। मैं पत्थर पर अपना सिर पटक दूं या आग में कूद जाऊं, इतना ऊंचा स्टैंडर्ड है उनका। तो मैं कहाँ जाऊं, ये गौरांग गुण निधि मुझे कहाँ जाने से मिलेंगे। तो यहाँ तो इतना विरह हो रहा है, हम लोग कम से कम क्लास में तो बैठ ही सकते हैं, है कि नहीं, पत्थर पर सर पटकने की जरूरत नहीं है, कम से कम क्लास में अपना बैठ जाएं पालती मार के, यही बहुत हो जाएगा। इतना विरह, इससे विरह जो है महसूस हो जाएगा, कम से कम भगवान के लिए प्रेम आ जाएगा, क्योंकि गौरांग गुण निधि कहाँ है, सब यहाँ बैठे हुए हैं गौरांग गुण निधि। जो भी व्यक्ति भगवान से जुड़ गया, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास, जो गौरांग महाप्रभु के संगी गणों को नित्य सिद्ध मानता है, उसका क्या हो जाएगा, वो सीधे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के पास सीधे पहुंच जाएगा, क्योंकि इतना मानने मात्र से, इतना मानेगा कब वो, जब वो सुना होगा, जब वैष्णव के संग बैठ करके सुना होगा, सबसे पहले सुनना होता है। जो ठीक से सुन नहीं सकता है वो ठीक से सेवा भी नहीं कर सकता है आगे कोई भी चीज के। तो जो ठीक से सुनता है वो आगे सेवा भी करेगा और वैष्णव का उसको महत्व भी पता चल जाएगा, जीवात्मा क्या है, वैष्णव क्या है, फिर भक्त किसको कहते हैं, कैसे हम उनको देखें एक दूसरे के पूरक। तो आइए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्रील गदाधर पंडित जी के बारे में पहले सुन लेते हैं, फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में भी सुन लेते हैं। श्री राधा प्रेम रूपा या पुरा वृंदावनेश्वरी साक्षी गदाधरो गौरवल्लभ पंडिताख्यक निर्णीत श्री स्वरूपैर्यो ब्रज लक्ष्मी तया यथा पुरा वृंदावने लक्ष्मी श्याम सुंदर वल्लभ। तो आगे और भी है क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं ज़्यादा पयारों को नहीं पढ़ूंगा। ये गौर गणोदय दीपिका में इस प्रकार से मेंशन किया है और चैतन्य चरितामृत आदि लीला में भी गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति तांसबार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। ये सब क्या हैं, स्वयं महाप्रभु की निज शक्ति हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कौन हैं, भक्त के रूप हैं, साक्षात भक्त के रूप, और स्वयं नित्यानंद प्रभु कौन हैं, भक्त के स्वरूप हैं, और स्वयं अद्वैता आचार्य जो हैं भक्ता अवतार हैं, और स्वयं जो गदाधर पंडित जी का आज वर्णन किया जा रहा है वो कौन है, भक्त की शक्ति, और स्वयं श्रीवास जी जो नारद मुनि हैं वो कौन हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये पंच तत्व हैं, जो इनको समझ जाएगा ये अभिन्न है, लेकिन रसास्वादन के उद्देश्य से ये क्या है, एक तत्व में निरूपित किए जाते हैं, ये बिल्कुल अभिन्न है एक दूसरे से। क्योंकि भगवान जो हैं अपने भक्तों को, भगवान कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ। तो जिसका भक्तों से प्रेम है और जो भक्त जो वैष्णव तत्व को जानता है वही तो भक्तों से प्रेम करेगा। जैसे अभी हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में उनका रूटीन बताएंगे कि कैसा रूटीन था, तो क्या फिर हम नकल करने लग जाएं? वो 10 बजे से 4 बजे तक लिखते थे, अब इतनी देर रात को क्या हम लिखने लग जाएं? नकल करने लग जाएं? उनका क्या अनुकरण नहीं करना है उसको, मतलब नकल नहीं करनी है आपको, आप जिनके आश्रय में हो, क्योंकि भक्ति विनोद जी को भी समझने के लिए आप जिनके आश्रय में हो, आप किसी भक्त को अपना शिक्षा गुरु बनाइए, काउंसलर बनाइए, जिनसे आपको अपने दिल की बात कहने का मन हो। और वास्तव में जो व्यक्ति आश्रय लेके भजन करता है उसको कृष्ण कभी त्यागते नहीं है, मनमाने तरीके से नहीं कि मेरे को जैसे सुख मिल रहा हो मैं वैसे करूंगा जी। तो इसके ऊपर भी प्रश्न उठेगा किसी का कि प्रभु जी ठीक है हम एक भक्त के संग हम जुड़ गए तो, लेकिन औरों की सेवा कैसे होगी फिर, यहाँ तो सबकी सेवा करने के लिए तो ये सेवा हो रही है, क्योंकि इतने वैष्णवों के संग बैठ करके भगवान के बारे में सुनना ये सेवा है, इतने वैष्णवों के संग में भगवान की आरती का दर्शन करना, इतने वैष्णवों को प्रसाद सर्विस कर देना, क्योंकि हरेक को तो आप शिक्षा गुरु नहीं बना सकते ना, मतलब हरेक से शिक्षा ले सकते हैं लेकिन विशेष रूप से पर्टिकुलर व्यक्ति के हम आश्रय में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम औरों की सेवा नहीं करते हैं, औरों की सेवा प्रसाद जब बांटते हैं तो सबकी सेवा होती है, जब हम सबको वांछा कल्पतरुभ्यश्च कहते हैं ये हमारी सेवा होती है, जब हम भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं उस वक्त हम सेवा करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, जब हम भागवत श्रवण करते हैं और भक्तों के लिए अपने जन्मदिन पर अपने शादी की सालगिरह पर प्रसाद वितरण करो तो सब वैष्णवों की सेवा हो जाती है, सारा परिवार आके मिल करके उनकी क्या करो, सेवा करो, खुद बांटिए बढ़िया से, तो ये सभी वैष्णवों की सेवा करी आपने, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक ही के अंडर में था अब तो मैं किसी का मैंने, तो ये होता है। अब ऐसा नहीं कि आप सबके पास जाकर के अपनी व्यथा सुना रहे हैं तो उससे भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है अलग अलग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सेवा भी नहीं कर रहे हैं, हम सबको सम्मान, सकले सम्मान करी थे सकती देहो नाथो जथा जथा, और जब हम भागवत क्लास में बैठ करके भागवत सुनते हैं अनेक वैष्णव का, इसीलिए प्रभुपाद जी ने देखिए, भले ही गर्ल्स यूथ चल रहा हो, यूथ प्रोग्राम चल रहा हो, भक्ति वृक्ष चल रहा हो, आश्रय चल रहा हो, दुनिया भर के नामहट भक्ति कुटीर जितने प्रोग्राम हैं उसका समावेश होता है एक क्लास में सवेरे की श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत के समय और कोई क्लास नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें अनेक वैष्णवों का हमें संग मिलता है, क्योंकि सबका उसमें संग मिल रहा है, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला भागवतम क्लास, कोई दूसरी क्लास नहीं। सब जितने हैं वो किसी भी ड्रेस में हो, किसी भी कहीं का भी रहने वाला हो, वो सब। और हमने देखा है बॉम्बे में महाराज लोग भी बैठते थे, हम लोग प्रवचन देते थे और पता चला आठ महाराज हैं। आठ महाराज जब प्रवचन दे देते थे तो नवे दिन वो खुद बोलते थे अब हमने नहीं देना है, नहीं तो फिर से रिपीट हो जाता। वो बोलते थे अब जिसका रूटीन है वही देगा, और वो सब बैठे होते थे और सुनते थे। तो कितना पर्टिकुलर बोलना होगा एकदम, तो और कितना उसमें आनंद आता है कि देखिए सब बैठे हुए हैं। तो ये भागवत क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण भक्तों के लिए। 9 बजे तक का पैकेज, प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरे वरिष्ठ पुरुषों 10,000 साल तक के लिए मैं सब कुछ बता दिया। मैंने अपने को ज्यादा स्मार्ट नहीं समझे कि हम अभी समय परिस्थिति काल के, प्रभुपाद जी 10,000 सालों के लिए सब कुछ बता के चले गए हैं। कुछ नई चीज मत खोजना वरना ये मोमेंट नष्ट हो जाएगा। नया नया प्लानिंग मत बनना, उस प्लानिंग को पहले पूछ लेना अपने वरिष्ठों से कि ये प्लानिंग मेरे मन में आ रही है, इसको करें कि ना करें, नहीं तो डिविएट हो जाएगा, डिविएशन आ जाएगा, नई नई पॉलिसियां शुरू हो जाएंगी। पूछना चाहिए कि ये करें कि नहीं करें अपने वरिष्ठों से, ऐसा आ रहा है, उत्तम चीज आ रही है। और कोई नई चीज मत खोजना, मेरे चले जाने के बाद तुमको तब पता चलेगा कि तुम इस संस्था को कितना अधिक बनाए रखोगे। मेरे प्रति प्यार का पता तब चलेगा जब तुम मेरे चले जाने के बाद भी संस्था को बनाए रखोगे। और इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 3 प्रेडिक्शन की थी कि एक दिन एक व्यक्ति, जल्द से जल्द एक व्यक्ति आने वाला है जो क्या करेगा, हैं, पूरे विश्व में प्रचार करेगा। 1896 शायद भक्ति विनोद जी जब ये प्रेडिक्शन करके गए तो तभी प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे। और फिर दूसरी क्या थी कि एक दिन जो है ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, सब काले गोरे लोग मिल करके जो है क्या करेंगे, हरि बोल करेंगे, और वो भी प्रभुपाद जी ने करके दिखा दिया पूरे। जब आप गौर पूर्णिमा में जाते हो तो हजारों 50,000 लोग कम से कम, सब साउथ अफ्रीका से लेके सारे विश्व से भक्त जो हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, हमारे जितने भी आचार्य हैं ये पूरक हैं एक दूसरे के। ये आचार्यों को हम किसी भी ऐसी संस्था में नहीं हैं, डायरेक्ट ब्रह्म माधव गौड़ीय इस्कान, यहां रह करके आपको कृष्ण मिल गए हैं। देखिए कितना सुंदर भगवान सजाए हैं, श्री राधिका रमन जो की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री कृष्ण बलराम जो की, बोलो श्री श्री राधिका रमन जी के भक्त वृंद की। तो भगवान साक्षात, कोई बोले कि मैंने भगवान देखे नहीं, तुम्ही मूर्ति नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, यही तो है भगवान, अब कहाँ ढूंढ रहा है। डेली इनके दर्शन कर लो, यही लाइव हो जाएंगे एक दिन पूरे पूरे, गारंटी है। क्योंकि भगवान देखते हैं कि कौन व्यक्ति नियमित है, वो देखेंगे कि इसको मेरे से मिलने का इतना वह, इन्हीं में लाइव हो जाएंगे, लाइव और दर्शन करके फिर रो बस हो गया, और क्या है, फिर रोना ही है, आनंद अश्रु है कि नहीं। ऐसे ऐसे भक्त भी थे जो भगवान के दर्शन करते ही जो है लाइव हो जाते थे, भगवान भी रो रहे हैं उसके लिए, वो भी रो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, वो जो भगवान को गले लगाया हुआ, भगवान उसको गले लगाए हुए। तो ये आनंद है। तो बताया गया है कि गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ईश्वर भक्त, ईश्वर अवतार, प्रकाश एवं शक्ति, इन 6 तत्वों के रूप में श्री चैतन्य देव का विलास है, तथा अचिंत भेद अभेद विचार से वे अद्वैय ज्ञान कृष्ण चैतन्य नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण लीला में जो राधिका हैं वही गौर लीला में गदाधर पंडित गोस्वामी जी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं, श्री गदाधर पंडित के प्रति गौरहरि इतने अधिक प्रेम और स्नेहिल थे कि क्षण भर भी उनके बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी को इस प्रकार से भक्त संघ का अगर सुयोग मिलता है कि वो क्षण भर भी ऐसा भी हुआ भक्त भक्त के बिना नहीं रह पाते, समझ रहे, तो वह चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के एक वर्ष के पश्चात प्रकट हुए थे और चैतन्य महाप्रभु के जाने के ठीक एक वर्ष बाद क्या हो गए, वो विरह सहन ही नहीं कर पाए गदाधर पंडित। चैतन्य महाप्रभु जब वो स्वयं सची माता ने चैतन्य महाप्रभु के ही उनको बोला था कि गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु का इतना ध्यान रखते थे, इतना ध्यान रखते थे हर स्थिति में, तो सची माता ने बोला था कि तुम इनके इसका कोई भरोसा नहीं है, कब यमुना में कूद जाए, कब कहाँ कूद जाए, कब कहाँ गिर करके हा कृष्ण बोलने लगे, तुम इसको संभालना। महाप्रभु जो है इस प्रकार से पागल हो जाते थे कृष्ण प्रेम में, तो गदाधर पंडित जो है उनको संभालते थे, तो सची माता ने ये ड्यूटी दी थी, तो इसलिए नीलांचल में भी हर जगह वो महाप्रभु के लगभग संग रहे। तो बाद में एक दफे हट करने लगे कि मैं भी आपके संग आऊंगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला अब आप वृद्ध हो चुके हैं, अब ऐसा कीजिए अब आप केवल किनकी, तोटा गोपीनाथ की सेवा कीजिए, अब आप बस हो गया। वो नहीं मानने लगे तो उन्हें बोला तुम अपने सुख को देखोगे कि मेरे सुख को, तो जब ये बात बोल दी तो फिर क्योंकि हम तो आपके सुख को देखेंगे, प्रेम का मतलब है आपके सुख को, आपका सुख क्या है इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम जहां पर अपने सुख की बात आई वो प्रेम नहीं है। आत्म इंद्रिय तृप्ति नाम धरे काम नाम कृष्ण इंद्रिय, कृष्ण इंद्रिय तृप्ति नाम धरे प्रेम नाम। तो संसार का जो प्रेम है उसकी लोहे से तुलना दी गई है और भगवान के प्रेम की तुलना जो है सोने से दी है, गोल्ड गोल्ड से, और भक्तों का प्रेम ये भी गोल्ड की तरह है, उनके बिना ना रह पाए ये अच्छी बात है कि नहीं। हम वैसे फैनाटिक नहीं हैं लेकिन उनके संग के बिना अगर हमें कैसे, उनके संग के बिना हम अब कृष्ण भजन कर पाएंगे, कौन हमें कृष्ण देगा, हमें कहाँ जाके, हमारे देखिए पूरा की पूरी परंपरा जो है श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद सही मोर भजन पूजन सब कुछ वही है। अब देखो कहाँ कृष्ण की भक्ति की बात बता रहे कि अब कहाँ से यही मेरे भजन पूजन है, तो समझने की बात है ना तत्व को, ये तत्व को कैसे समझे हम, क्योंकि ऐसा वैष्णव जो भगवान की सेवा में निरंतर लगा हुआ है उसकी सेवा करने मात्र से हम कृष्ण की सेवा कर देते हैं, वही कृष्ण की सेवा है, हमसे क्या कृष्ण की सेवा होगी, वो जैसा कहे वो कृष्ण की सेवा है, बस हो गया। इसी को कहते हैं आश्रय लेना, और ये श्रद्धा हो जाना किसी पर, यही है, यही आपके आपको कृष्ण प्रेम मिल गया। ऐसी वैष्णव के ऊपर श्रद्धा हो जाना, गुरु गुरांग के ऊपर ऐसी श्रद्धा को पाने के लिए तो ये सभी क्लासें हो रही हैं, जितना भी एक्टिविटीज हैं भक्तों भक्ति की उनका उद्देश्य क्या है कि ऐसी श्रद्धा ऐसा लौल्य जो है हमारे भीतर जाग जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा बस। तो इसलिए वैष्णव के बारे में सुनना चाहिए अधिक से अधिक, और कभी कभी इष्ट गोष्ठी करनी चाहिए। ये तो हम सोचते हैं ये सभी शुद्ध वैष्णव की बात हम सुन रहे हैं, अब भैया जो आए हुए हैं, जो लगे हुए हैं, जो यहां पर भी मंदिर में प्रभुपाद जी की शरण लिए हैं, प्रभुपादानुगा है, अब उनका गुणगान कैसे होगा, उनके गुणगान के लिए 15 दिन में एक इष्ट गोष्ठी होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं भैया। चार आज 5 वैष्णव अपने जीवन चरित्र पहले तो बताएंगे कैसे वो भक्त बने, अब जब बताएंगे अपना पूरा पूरा तो कितनी श्रद्धा डेवलप होती है, ये सब बता रहे हैं अपना, अच्छा आप भी ऐसे बने, आप भी ऐसे थे प्रभु जी, तो अपने लिए बल मिलता है अच्छा। और उसके बाद में फिर 2 वैष्णव जो सबसे ज्यादा उनमें श्रद्धा रखते हैं उनको बोला जाता है थोड़ा इनका गुणगान करें हम, तो वो जब बताते हैं कि इनकी क्या क्या सेवा है, कैसे कैसे ये जो है इनका भावना है, तो सभी लोगों को लगता है हम तो संग में रहते हुए भी संग नहीं कर रहे हैं, हमने तो कभी किसी के बारे में जाना ही नहीं, केवल हम शकल देखी, हमने कपड़े देखे, ये थोड़ी संग है, वो तो व्यवहार ही संग है, ये वस्त्र और ये और अन्य इत्यादि चीजें सब वर्णाश्रम धर्म ही तो एहो बाह्य, आंतरिक वो मूल चीज है, व्यक्ति का अंदर का भाव क्या है नहीं। तो ये इस प्रकार के वैष्णव थे, परम वैष्णव हरिओम। क्षण भर भी उनके बिना नहीं रह पाते थे चैतन्य महाप्रभु। उनके शांत विरक्त गंभीर सौम्य एकांत प्रिय गदाधर अपने घनिष्ठ मित्र गौर राय से विपरीत प्रकृति के थे, जो कि चंचल अधीर वो नटखट थे। गंगादास पंडित की पाठशाला में निमाई पंडित तर्कहीन प्रश्नों द्वारा गदाधर को चुनौती देकर नियमित रूप से उद्विग्न करते रहते थे। बाकी सब निमाई पंडित से डरते थे शास्त्रार्थ करने में या कोई भी तर्क वितर्क करने में, क्योंकि ऐसे मुंह की खानी पड़ती थी विद इन ए सेकेंड। इतना बढ़िया आंसर, भगवान से कौन हार सकता है, मतलब कौन जीत सकता है। तो लेकिन गदाधर पंडित जो हैं उनसे तर्क करते थे और चैतन्य महाप्रभु को बड़ा प्रसन्नता होती थी। क्यों? क्योंकि मूड क्या है? मूड है एकली ईश्वरी राधे कृष्ण समेत गौर समेत सब भृत्य। क्योंकि मूड यह है यहां पर एकली ईश्वरी राधे, श्लोक है एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, लेकिन चेंज हो गया एकली ईश्वरी श्री राधे कृष्ण समेत हम सब भृत्य। जारे जैसे नचाए वैसे करे नृत्य, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। सुख सारी द्वंद में भी जब सुख सारी जो है आपस में थोड़ा सा एक दूसरे की बढ़ाई करने लगे, सुख कृष्ण का तोता सारी जो है राधा रानी का तोता, सुख बोले आमार कृष्ण करे आमार कृष्ण बंसीर करे रे गान। हमारे कृष्ण जो है पता है तुमको बंसी में गाना गाते हैं, गान गाते हैं इतना बढ़िया। सारी बोले सच बोलूं ताते लिखा राधार नाम, मतलब वो जो गाना गाते हैं ना वो और क्या गाते हैं, वो केवल राधा रानी का नाम ही लेते हैं उसमें, और कुछ भी करते हैं केवल राधा रानी का नाम लेते हैं। तो ये उस मूड की बात हो रही है, इतना ऊंचा मूड। श्री कवि कर्णपुर के कथनानुसार ब्रज लीला में गदाधर पंडित वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी हैं। नवदीप लीला में गदाधर पंडित ने गौरचंद्र के मुख्य सहायक के रूप में उनकी सेवा की। वृंदावन के श्री श्री राधा कृष्ण गौर गदाधर के रूप में प्रकट होकर नवदीप में गंगा तट के वन निकुंजों में लीलाएं करते थे। गदाधर पंडित के गुणों एवं प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु का एक अन्य नाम नित्यानंद प्राण भी था लेकिन गदाधर प्राण। गदाधरे रे प्राण धन है, ये बोल करके जो है चैतन्य महाप्रभु बड़ा, गदाधर मेरा प्राण है, गदाधर जो है मेरे प्राणों से भी अधिक मुझे प्रिय है। तो कोई गदाधर बोल देगा महाप्रभु खुश हो जाएंगे। चाहते हो महाप्रभु खुश होए? बोलिए जय गदाधर पंडित की, गदाधर पंडित जी की, श्रीमती राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम। जो बोलेगा राधे श्याम उसको मिलेगा श्री वृंदावन धाम। अभी आ गया, इसको अन्यथा नहीं लेना है, मेरी आ गया मेरे से, अब आ गया बीच में, अन्यथा नहीं लेना कोई। जो भी तो गदाधर पंडित के गुणों और प्रेम का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु का एक नाम गदाधर प्राणनाथ, गदाधर पंडित के जीवन आधार। एक दिन गंगा तीर पर विचरते हुए, अब फ्लैशबैक में चले जाइए हैं, गंगा के निकट तीर पे किनारे पर विचरते हुए विचरण करते हुए गौर सुंदर ने एक वन निकुंज में प्रवेश किया। वन निकुंज था और उसमें प्रवेश किया चैतन्य महाप्रभु ने और ध्यान अवस्थित होकर के आसीन हो गए, वहां बैठ गए ध्यान लगा कर। शीघ्र ही अपनी वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए भाव विभोर हो उठे। भगवान का भाव आवर्धित करने हेतु मुकुंद दत्त पूर्व राग के मधुर गीत गाने लगे। मुकुंद जो है बहुत बड़े गवैया, बहुत सुंदर मीठा रस युक्त भाव युक्त प्रेम युक्त गाते थे वो, इतना ऐसा गाते थे मधुर कि बस वो अगर गाने लगे तो फिर जैसे हिजोलनस लोकनाथ स्वामी महाराज गाते हैं तो सारे लोग मृदंग वाले भी पीछे पीछे से निकल करके आ जाते हैं। वैसे कोई गाएगा तो सोचते हैं कौन गा रहा है, वो गा रहा है, ठीक है ऐसे खड़े रहेंगे। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, ये भगवान के प्रति सेवा अपराध है। 64 प्रकार की में से कोई भी गाए, नया भक्त भी, सब मृदंग बजाएं, तब कहा गया कि ये भावना है। यही भक्ति में कोई कहे कि मैं 64 माला करता हूं, लेकिन भगवान का कीर्तन में कोई मृदंग नहीं बजा रहा है, वो 64 माला नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बुरा नहीं मानना, 16 ही करें भैया, लेकिन उसमें कीर्तन में बजा दे या बहुत अच्छा सेवा हो जाएगा, ये तत्व है। 64 माला कंप्लीट कर रहा हूं अपनी, कंप्लीट भगवान के लिए बजाना आता है तो ठीक है, आपको किसने कहा है नया नया नियम बना दीजिए, अभी आप 64 माला न कीजिए, अभी 25 कीजिए और मृदंग बजाइए, बस यही सेवा है मूल भाव। या फिर आपको गुरु गौरांग द्वारा सैंक्शित कर दिया हो भैया ये मृदंग नहीं बजाएगा, 64 माला करेगा, अलग बात है, फिर अलग बात है, नहीं तो मुश्किल है, नहीं तो भजन से फिर उसमें कृष्ण नहीं मिलते हैं, अपराध होते हैं केवल नई नई चीज बना देने से। तो श्री गदाधर ने सुरभित वन पुष्पों की एक माला बनाई। अब चैतन्य महाप्रभु ध्यान मुद्रा में आसीन है, गदाधर पंडित क्या कर रहे हैं, माला बना रहे हैं, और प्रेम पूर्वक भगवान के सुंदर कंठ में सज्जित कर दी, सजा दिया, कंठ में मतलब गले में डाल दी। जिस प्रकार वृंदावन में श्री राधा दामोदर को वस्त्राभूषित करती थी, उसी प्रकार गदाधर गौरांग महाप्रभु के उज्ज्वल रूप को विशोभित करते हैं, विभूषित करते हैं। वे चैतन्य महाप्रभु की सैया तथा शयन कक्षों को भी सुमधुर सुगंधित सुमनों द्वारा, सुमन मतलब फूलों के द्वारा सजा देते थे, कि महाप्रभु जैसे राधिका रमन को सजाया है कितने सुंदर फूलों से, है कि नहीं, तो ये फूल भगवान के लिए ही हैं। अब इनकी सार्थकता हुई सारी चमेली के फूलों की, और ये फूल जिस पेड़ से लगा है वो पेड़ भी मनुष्य जीवन पाएगा अगले जीवन में, क्योंकि वहां उसका जीवन सार्थक हो गया, वो राधिका रमन के चरणों में आ गए। ऐसे ही तो ये स्वीकृति मिलती है सब, ऐसे करके उसको भक्ति मिलेगी उस पेड़ को भी। और जो व्यक्ति इस प्रकार से सजाता है उनका तो कहना ही क्या है, ठीक है कि नहीं, जो स्पॉन्सर्ड करता है कि आज मेरी तरफ से राधिका रमन को इस फूल बंगला, उसके बारे में तो कहना ही क्या है, फिर भगवान बोलते मैं बिक जाता हूँ, भगवान के ही फूल, मैं भी भगवान का, जो पैसे दिए वो भी भगवान के, लक्ष्मी जी के, मेरा क्या था, हम तो सब उधार लेके आए, फिर भी भगवान बोलते मैं बिक जाता हूँ तुम्हारी भावना में, मैं बिक गया, हमारा कुछ नहीं था लेकिन फिर भी भगवान बिक जाते हैं। ऐसे हैं भगवान, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम, ऐसे प्रेम पुजारी हैं भगवान, प्रेम की पूजा करते हैं भगवान, पूजा, पूजा का मतलब क्या, हम किसी की पूजा क्यों करते हैं, हमारे भीतर प्रेम है ऐसा, फॉर्मेलिटी थोड़ी कि खाली अगरबत्ती घुमा दी, अब जबरदस्ती जी घुमाना पड़ रहा है, बस हो गया, आंख बंद करें बस, कब खत्म होगा प्रेम पूजा, ये प्रेम की पूजा है। गौर गदाधर एक वृक्ष के मूल पर बैठ गए, अब इसी में पूरा समय हो जाएगा, जो एक मंच पर कार्य कर रहा था, श्री नित्यानंद प्रभु उनकी दाई ओर विराजित हुए, श्रीवास पंडित ने उन्हें फूलों का हार मंडित किया, अद्वैत आचार्य जी ने आरती करी क्योंकि वरिष्ठ थे सबसे, और नरहरि कि वह नरहरि आदि करी चामर ढुलाए, वो चामर ढुला रहे हैं, शुक्लाम्बर ने चंदन अर्पण किया, मुरारी गुप्त ने भगवान का महिमा गान किया। तो ऐसे करके बहुत कुछ है, लास्ट में मैं ये बता देता हूँ कि जैसे चैतन्य महाप्रभु, हाँ, जब उनको सेवा देके गए तोता गोपीनाथ में, गोपीनाथ जी की, तो ये बड़े वृद्ध हो गए थे काफ़ी, और गोपीनाथ जी इतने ऊँचे बिल्कुल, तो ये क्या करते थे, टेबल रख करके उनकी सेवा करते थे, टेबल में रख के, क्योंकि इतने ऊंचे थे वो, जैसे मायापुर में भी राधा माधव बड़े ऊंचे हैं, भक्त टेबल लगा करके उनकी सेवा करते हैं, ऊपर जब सिर को सजाना होता है, गले गाल में उनका बहुत सुंदर सुंदर सजाना होता है, तो एक दफे इतने वृद्ध हो गए कि टेबल में भी नहीं चढ़ पाते थे, ठीक से भगवान को सेवा नहीं कर पाते थे, तो तोटा गोपीनाथ पता है क्या हो गए, पद्मासन में हो गए, एकदम झुक गए ऐसे करके, आ अपने भक्त के लिए पूरे के पूरे झुक गए ऐसे करके, अपने को नीचे कर दिया ऐसे, और उनकी सेवा करते करते गौरांग महाप्रभु जब दाहिने पैर में समा गए, चैतन्य महाप्रभु का अंतर्धान कैसे हुआ, जो तोटा गोपीनाथ हैं उनके दाहिने पैर में समा गए 48 वर्ष के बाद में, तो उनके ठीक एक वर्ष के बाद में जो है गदाधर पंडित जी से उनका विरह सहन नहीं हुआ, वो भी जो है तोटा गोपीनाथ में समा गए, वो भी उसी में समा गए। तो पूरे विश्व में एक ही विग्रह है तोटा गोपीनाथ, जिसने दर्शन नहीं किए उसने क्या किया अपने जीवन में, जो भी जगन्नाथपुरी जाए वो हरिदास ठाकुर की समाधि और सिद्ध बकुल और समुद्र स्नान और तोटा गोपीनाथ का दर्शन जरूर करे, फिर जगन्नाथ जी के पास जाए भैया महाप्रसाद पाने के लिए, दर्शन और महाप्रसाद पाने के लिए, ये हमारे गौड़ी वैष्णव का वो है, क्योंकि तोटा गोपीनाथ में श्रीमती राधा रानी और स्वयं गौरांग महाप्रभु जो है दोनों समावेत हुए हैं, वो विग्रह कैसा होगा बताइए। अद्भुत उनकी छाती, अद्भुत उनका मुखारविंद, अद्भुत उनके चरणारविंद, बहुत सुंदर है, दिव्य। उनको देखने मात्र से गदाधर पंडित की आशीर्वाद मिल जाता है हमें। तो श्रील गदाधर पंडित तिरुभाव दिवस महोत्सव की, तो अब जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा श्रवण करेंगे। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी सन 1838 में 1838 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक संभ्रांत परिवार में प्रकट हुए। आप बोलोगे पहले हिंदी में बोला फिर अंग्रेजी में क्यों बोल दिया। कुछ लोग बोलते हैं पूजी 18 क्या होता है, आज लोग 18 भी उनको 1838 पता ही नहीं है, अब भूल गए सब, 1 2 3 सबको पता है। बच्चों से भी पूछो बोलते हैं ये 12 क्या हुआ, वो 12 बोले हाँ ठीक है। बहुत संभ्रांत परिवार में प्रकट हुए, अपने असाधारण प्रचार और प्रचुर लेखन कार्य द्वारा उन्होंने प्रकाशित कर दिया कि वो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। एक महाभागवत वैष्णव के रूप में जीवन यापन करते हुए वे अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों पूर्व तक गृहस्थ आश्रम में रहे, लास्ट तक लगभग, उसके बाद में फिर उन्हें परमहंस बाबा जी दीक्षा ग्रहण कर ली थी और समाधि दशा में राधा माधव और गौर गदाधर की सेवा में तल्लीन हो गए थे। तो जिला मजिस्ट्रेट के रूप में एक उत्तरदायी सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने एक कृष्ण भावना भावित परिवार का पालन किया और कृष्ण भावनामृत पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नानाविध सेवा भी की, बहुत प्रकार से वैरायटी वैरायटी सेवाएं भी की, यही उनके जीवन की विलक्षणता है। दिन भर की सरकारी नौकरी के उपरांत वे 4 घंटे सोते और मध्य रात्रि में उठकर भोर होने तक लिखते रहते, यही उनका दैनिक कार्यक्रम था श्रील प्रभुपाद। कार्यक्रम क्या था, सर्वदा प्रतिक्षण श्री कृष्ण की प्रेम सेवा में अर्पित करने को आतुर वे एक नियमबद्ध और कठोर दैनिक जीवन का पालन करते थे। क्या था, रात्रि 8 से 10 बजे तक, ध्यान दीजिएगा है, रात को 8 से 10 बजे तक 2 घंटे विश्राम, 8 से 10 बजे तक सो लेते थे, विश्राम कर लेते थे और आगे 2 घंटे और सोएंगे, फिर 4 घंटे हो जाएगा टोटल मिलकर के। और रात्रि 10 बजे से 4 बजे तक लेखन कार्य, ये जितने भी शास्त्र हैं, नाना शास्त्र विचार अनेक, उन सबको बंगाली भाषा में, इंग्लिश में, ऐसे अनेक प्रकार से लिखते थे। प्रातः 4 से 4:30 बजे तक फिर आधा घंटा विश्राम, 4 बजे तक लिखते थे, अब आधा घंटा फिर विश्राम करते थे। प्रातः 4:30 से 7 बजे तक अपना नाम जप करते थे, 4:30 से, कोई बोले मंगल आरती, बोले उसी में मंगल आरती है, क्योंकि समस्त कार्यों में कली कालीर धर्म नाम क्या है, नाम संकीर्तन, तो कलयुग का जो धर्म है वास्तव में क्या है, नाम है। और अगर कोई व्यक्ति केवल नाम जप रहा है तो उसका सारी चीजें उसमें समावेश हो जाता है, और इनके तो निरंतर मंगल आरती चल रही है। तो नाम जप 7 बजे तक, और 7 से 7:30 बजे पत्राचार, जो क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट थे वो, तो जो उनको आते थे लेटर्स उनका जो है आंसर देते थे या पत्र लिखते थे, क्योंकि उस वक्त ऐसे ईमेल फैक्स ठीक है कि नहीं, ये सुविधाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी ऐसी। तो प्रातः 7:30 से 9:30 बजे तक शास्त्र अध्ययन, उनको क्या नहीं आता होगा बताइए, कमल मंजरी हैं वो, फिर भी जो है अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इनके जीवन से क्या सीखने को मिलता है, शास्त्र अध्ययन। तो जरूरी नहीं है कि कोई 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए तो अब वो अध्ययन नहीं करेगा या अब वो नई किताब नहीं पढ़ सकता है। एक महाराज जी जो है रसराज श्री कृष्ण लेके घूमते थे, बोलते थे मेरे को इससे इतनी प्रेरणा मिलती है, मैं इसको आज तक 500 दफे पढ़ चुका हूँ लेकिन फिर भी जो है मेरे को नया लगता है। तो प्रभुपाद जी की सारी, हम नई नई किताबों को पढ़ने की चिंता ना करें, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़े, सबसे पहले भक्तों को प्रभुपाद जी की किताबें पढ़वानी चाहिए। क्या पढ़े जी सबसे पहले? बोले प्रभुपाद लीलामृत पढ़ो भैया, सबसे पहली किताब। पहले जान लो एक शुद्ध भक्त की जीवनी। फिर क्या पढ़े जी? बोले भगवद गीता पढ़ लो। पढ़ लीजिए, बोले ठीक है रसराज श्री कृष्ण पढ़िए, फिर अब फिर पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पढ़िए, फिर ये पढ़िए, फिर वो पढ़िए, सारी छोटी किताबें पढ़ लीजिए। पढ़ लिया जी, बोले अब श्रीमद भागवत शुरू करो। भक्ति रसामृत सिंधु भी, चैतन्य शिक्षामृत भी, केवल प्रभुपाद जी की किताबें। हिजोलनेस महानिधि स्वामी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज आपकी किताबें पहले पढ़ूं या प्रभुपाद जी की किताबें? तो बोलते हैं कि जब प्रभुपाद जी की सब किताबें पढ़ लोगे तब मेरी किताबें पढ़ना शुरू करना, ये उन्होंने बोला। प्रभुपाद जी आज हम उसमें से निकाल निकाल करके अपना नाम लिख के मेंशन कर देते हैं, ठीक है कि नहीं? अच्छा है अन्य किताबें भी छपे, शास्त्र आने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ लीजिए, उसमें सारा जहां है सारे प्रवचन उन्हीं में से ले ले करके हम लोग बोल रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। हमको सब लोग प्रणाम करने लग जाते हैं, ठीक है कि नहीं? हम लोगों का नाम हो जाता है, समझ रहे हैं? सब प्रभुपाद जी की कृपा, सारा प्रभुपाद जी की महिमा, सच में सारा ग्लोरिफिकेशन प्रभुपाद जी की, उनकी कृपा से ये सब। नहीं तो हमको कहां ये सब मिलता, ये सब खजाना, ये अद्भुत खजाना नहीं मिल सकता है। प्रभुपाद जी ये बूटी लाए थे, बूटी ऐसी परम बूटी। हनुमान जी ने तो एक पर्वत ला करके लक्ष्मण जी को बूटी सुंघाई, प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को भागवत की बूटी सुंघा करके कैसे देखे? सात समुद्र, हनुमान जी एक समुद्र पार किए, प्रभुपाद जी सात समुद्र पार किए। भगवान ऐसे यश फैलाना चाहते हैं अपने भक्त का, और पूरे विश्व के बेहोश लोगों को बूटी देकर के, ये हरिनाम की बूटी देकर के और भागवत और भगवत गीता देकर के जगा दिए। शैल प्रभुपाद की, ये है सच्चे अनुयायी भक्ति विनोद ठाकुर जी के, ठीक है कि नहीं? तो बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं, क्योंकि कहने को तो इतना कुछ है इनके बारे में कि कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे अगर बैठे रहें तो, पान उसमें भी लगेगा कि थोड़ा हुआ है, इतना है। अभी जो विस्तार से गौर पार्षदों का उसमें है तो इतना, इतनी लीलाएं हैं उनकी, बचपन से लेके ये करने से वो करने से, उनके 14 संतानें थी कम से कम, कहीं कहीं पर 13 लिख रखा, कहीं 14, कुछ 11 बोलते, लेकिन 14 है, 14 संतानें। ऐसा उनने जीवन, शुद्ध जीवन बिताया है। ज्यादा संतान होने का मतलब ये नहीं कि वो गिर गया भक्ति से। लोग जो है कभी कभी उल्टा सोचते हैं संसार में, बोले एक ही संतान है ना, बहुत अच्छा है, गृहस्थ किस लिए बने फिर? समझ रहे नहीं? तो फिलॉसफी जो है क्लियर है ही नहीं, लोग अपने अपने मनमानी फिलॉसफी जो है बना लेते हैं। उस उद्देश्य क्या है उसको बनने का? कि कृष्ण भावना भावित संतानें हों, और वो संतानें विश्व में फिर क्या करेंगी? उद्धार करेंगी। जब ज्यादा भक्त होंगे कम असुर होंगे तो क्या होगा? जल्दी से दबोचे जाएंगे। और ज्यादा असुर हो गए, भक्त कम हुए तो क्या है? भक्तों को डिस्टर्ब करेंगे, वो ये हरिनाम क्यों कर रहे हो, यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी करी, ये किताबों वाली हटाओ यहां से। तो भक्त बच्चे पैदा होंगे तो कितना बढ़िया होगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से पत्राचार, शास्त्राध्ययन, 9:30 से 10 बजे तक स्नान, प्रसाद ग्रहण, 1/2 लीटर दूध वो भी बता रखा है, फल और 2 चपातियां, ये उनका जो है 9:30 से 10 बजे तक वो क्या करते थे, सवेरे स्नान और प्रसाद ग्रहण। प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक न्यायालय का कार्य, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे पूरा, वो भी कृष्ण भावना भावित, उनका यही एक एक सेकंड यही चलते रहता था, कैसे कृष्ण पूरे विश्व में फैले, कैसे कृष्ण को सब जानने लगे, कैसे हर घर में मंदिर बने, कैसे सारे दुष्ट लोग जो है कृष्ण को समर्पित हो जाएं, परंपरा को समर्पित हो जाएं, यही उनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में यही चलते रहता था उनके माइंड में। 1 से 2 बजे तक घर पर अल्प आहार व विश्राम दोपहर में, दोपहर 2 से लेकर के 5 बजे तक न्यायालय के फिर से कार्य, 6 घंटा यानी कि। सायं 5 से 7 बजे तक संस्कृत शास्त्रों का बंगला में अनुवाद, 5 से 7 बजे तक 2 घंटा, और शाम को 7 से 8 बजे तक स्नान प्रसाद लेना, 1/2 लीटर दूध, भात मतलब चावल, और फिर 2 चपातियां। अब इसका सारांश क्या है? निद्रा 3 घंटे, लेखन कार्य 8.5 घंटा, देखिए लेखन कार्य किस लिए आज हम सब जान पा रहे हैं, तो उनकी कृपा से कैसे उन्होंने अपना सारा समय लिखने में लगा दिया ताकि हम पढ़ पाए। इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, कौन कहता है कि इन शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, इनको ठीक से पढ़ना चाहिए, इनको पढ़ने से हम विनम्र बन जाएंगे। हमको हमको शास्त्र ज्ञान का उन्हीं प्रभुपाद हर पल सिद्धांत को वो कर रहे हैं, हम ज्ञानी नहीं बनेंगे, हम भक्त बनेंगे। 3 घंटे निद्रा, लेखन कार्य 8.5 घंटे, जप और अध्ययन 4.5 घंटे और न्यायालय का कार्य 6 घंटे, तो टोटल ऐसे 24 घंटे वो हो जाते थे। ये पूरा समरी है। तो जिला मजिस्ट्रेट के रूप में एक उत्तरदायी सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने एक कृष्ण भावना भावित परिवार का पालन किया और कृष्ण भावना अमृत पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे। साथ ही साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नानाविध सेवा की। ठाकुर भक्ति विनोद जी ने जाह्नवा माता की परंपरा में श्री विपिन बिहारी गोस्वामी जी से वैष्णो दीक्षा ली थी और उसके बाद उन्होंने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी से आध्यात्मिक प्रेरणा एवं निर्देशन प्राप्त किया। उच्च सरकारी पद, विस्तृत विद्वता तथा आध्यात्मिक सिद्धि ने कभी भी भक्ति विनोद ठाकुर को विचलित नहीं किया। वे सर्वदा दर्पहीन, विनीत और सबके संग मित्रवत बने रहे। इसी को तभी तो उनके वैष्णव भजनों से पता चलता है ना। देखिए गृहस्थ होकर उनकी भावना क्या है, मानुषो देहो गेहो जो कीछु मोर अर्पिलो तुआपदे नंद किशोर संपदे विपदे जीवने मारने दाए मामा गेला तुवा पद वराने। कि हे नंद किशोर, मेरा मनुष्य जीवन मानुषो देहो देह गेहो शरीर जो किछु मोरा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, जो कुछ भी था मेरे पास में, क्योंकि दिया तो सब आपने है, अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर, सब आपको अर्पित है, अर्पित है। तो बिना अर्पित किए तो हम दुखी हैं। हम लोग संसार क्या सोचेगा उसको ज्यादा सोच रहे हैं, भगवान क्या सोचेंगे, भगवान कैसे खुश होंगे उसको नहीं सोच रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। मेरी सबसे बड़ी इज्जत तो भगवान की सेवा करने से शुरू होती है, भगवान के भक्तों की सेवा करने से, उनसे जुड़ने से शुरू हो जाता है। हमारा सारा साम्राज्य, हमारा सारा वैभव, हमारा नाम, हमारा कुल सब पवित्र हो जाता है वैष्णव से जुड़ने से, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन हम गुरु और गौरांग की सेवा को छोड़ करके हम अपने नाम की चिंता करते हैं संसार में, वो क्या करेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। भगवान क्या सोचेंगे कभी सोचा? तो ये बहुत जरूरी है। आगे बोलते हैं कि उन्होंने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी से आध्यात्मिक प्रेरणा और निर्देशन प्राप्त किया। उच्च सरकारी पद, विस्तृत विद्वता, आध्यात्मिक सिद्धि ने कभी भी भक्ति विनोद ठाकुर जी को विचलित नहीं किया। वे हमेशा विनीत बने रहे और उनके घर पे आने वाले दान याचक, कोई उनसे दान याचक भले ही वो नियमों को तोड़ रहा हो, दान याचक भी सदैव प्रसन्न और परितुष्ट होकर जाते थे, खुश होकर के जाते थे। मतलब वे सर्व हितैषी थे, सबके हितैषी थे। हितैषी कौन बन सकता है, ऐसे गुण किसमें आ सकते हैं बताइए, जो ईर्ष्या से रहित होगा और जो शुद्ध होगा वही सबके लिए अच्छा सोच सकता है, सबका भला सोच सकता है, सब आगे जाएं ये सोच सकता है, सबका मान होए, मेरा मान होए नहीं होए, बस सबका हो रहा है ना उसको इसमें खुशी होए, उसको कहते हैं वैष्णव, ठीक है कि नहीं। तो मेरे अंदर तो अभी ये नहीं है, इसलिए मेरे को, मैं वैष्णव नहीं हूँ, हम तो अभी एक तुच्छ इंसान भी नहीं बन पाए हैं। उनके घर आने वाले, हाँ, वे सबके हितैषी थे, कभी किसी से, यहाँ तक कि प्रचार कार्य में अपने विरोधियों से भी द्वेष नहीं करते थे। वस्तुतः उन्होंने कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। आँखें खोल के सुने हरि बोल। ठाकुर भक्ति विनोद सदैव साहसी बने रहे, सबके हितार्थ कार्य करते रहे, निजी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते हुए उन्होंने एक सादा जीवन व्यतीत किया। एक पंडित ने कहा, गीतावली में प्रस्तुत निम्नोक्त उद्धरण में सर्वशुद्ध दिव्य गुण संपन्न असल भक्ति विनोद एक बद्ध जीव की भूमिका अपनाते हुए हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार कृष्ण भावना अमृत में प्रगति की जाए। ऐसा लग रहा था कि एक बद्ध जीव की तरह कि वो ऑफिस जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनकी चेतना अंदर से कैसी थी। इसीलिए बता रखा है कि वैष्णवों को समझना बड़ा वो है कठिन है। किसी के बारे में भी टीका टिप्पणी करने से पहले हम 100 दफे सोच लें, है कि नहीं। हम अपनी मूर्ख बुद्धि से हम पता नहीं क्या सोच लेंगे। तो इसीलिए हो सके तो सामने ही जाके कि प्रभु जी जो वास्तव में जो सम्मान करता है किसी का ना, वो क्या करता है। अगर मैं आपका सम्मान करता हूं तो वो गुरु महाराज के पास भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वैसे सोचने की अपेक्षा इतना ज्यादा सोच लिए और भक्ति से गिर गए, चौपट हो गई भक्ति, उससे ज्यादा अच्छा क्या है कि हमें ऐसा लग रहा है आपके प्रति। उनको बड़ा खुशी होगी, देखो कितना सच्चा इंसान है, मेरे से भी आके पूछता है, ठीक है कि नहीं। तो वहां पर उत्तर मिलेगा, ये ऐसा नहीं, मेरा ये भावना था। बोले ओहो कितना दुष्ट मती हूं मैं। फिर पता चलेगा कि मैं गलत हूं कि नहीं, मैं क्या सोच बैठा था। तो ये बहुत गंभीर बातें हैं, तब जाकर के वास्तव में ये मूड हमारी जिंदगी में आ पाएगा जो इस प्रकार से गंभीरता से भजन करता है। ये पवित्र वैष्णव, इनका जीव, इनका केवल गुणगान करने मात्र से, सुनने मात्र से हम सब पवित्र हो जाते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद जी सदैव साहसी बने रहे। तुम्हें सदैव यत्नपूर्वक अपना मन श्री कृष्ण का महिमा गान करने में निमग्न रखना चाहिए, ये उनकी शिक्षा है। श्री कृष्ण कीर्तन द्वारा तुम्हारा मन तुम्हारे बस में आ जाएगा। अहंकार त्याग कर, देखिए कोई प्रश्न करे कि मेरा मन बस में नहीं है, तो श्री कृष्ण का गुणगान करके, उनका कीर्तन करके तुम्हारा मन बस में आ जाएगा। अहंकार त्याग करके सदैव स्वयं को दीनहीन, अकिंचन, क्षुद्र तथा तृण से भी अधिक तुच्छ मानो। वृक्ष समान बनने का प्रयत्न करो। समस्त प्राणियों के प्रति हिंसा का त्याग कर उनका पालन पोषण करो, मतलब उनको आगे बढ़ाओ, उनको क्या करो, मदद करो, समझ रहे हैं, उनकी मदद करो, कैसे वो मंगल आरती आ सके, ठीक है कि नहीं। कोई नहीं आ रहा है तो उसकी ऐसी तगड़ी क्लास लेने की जरूरत नहीं है, उसको प्रेम देने की जरूरत है कि नहीं। ऐसा बोलने लग जाए कर्कश उसको, फिर आपसे बात करना भी छोड़ दे, क्योंकि वो तो वैसे ही फ्रस्ट्रेशन में है। अगर उसके पास हायर टेस्ट नहीं है तो आप कैसे दोगे बड़ा पुचकार करके, प्रभु आप कितने अच्छे हो, जयानंद प्रभु की तरह प्रचारक बनना चाहिए, हिंसात्मक प्रचारक नहीं बनना है, ठीक है कि नहीं। हिंसा और क्या, उग्र रूप धारण के बात ही नहीं करी, वो उधर से आया तो उधर से ऐसे कर दिया, ठीक वो प्रणाम भी करे, ठीक है ठीक है, बहुत हो गए, प्रणाम का कोई फायदा नहीं है, ऐसे प्रणाम का कोई फायदा, अरे इतना तो कर रहा है, कौन प्रणाम करता है पहले बताओ। संसार में तो देखते ही लोग भागते हैं, बोलेंगे छोटी वाला आ गया भागो, वो प्रणाम कर रहा है, इतनी तो श्रद्धा है। तो उसके पास हाथ जोड़ दो, आप कितने अच्छे हो प्रभु, सच में आप देखो, आप मंगल आरती नहीं आते हो, आप 16 माला भी ठीक से नहीं कर रहे हो, लेकिन ये गुण तो है तुम्हारे अंदर, कितने अच्छे हो आप प्रणाम कर रहे हो। देखो मेरे तो, मैं तो सोचता हूँ कि मैं प्रवचन देने लग गया हूँ, अब काफी मेरे शिष्य प्रशिष्य बन गए हैं, अब मैं कैसे प्रणाम कर सकता हूँ किसी को, मेरे अंदर तो ये भाव, तुम कम से कम अभी भी तो विनम्र हो, तुमसे ये सीख सकता हूँ मैं, है कि नहीं। तो हर व्यक्ति के अंदर गुण है, क्योंकि हम क्या मान लिए हैं, ये तो पंजाबी है, ये थापर है, ये उड़िया है, ये बंगाली है, और ये बॉडीली कॉन्शियसनेस में क्यों घुसे हुए अभी भी। इसलिए प्रभुपाद जी पूरे जीवन भर आत्मा के ऊपर प्रवचन देते रहे, उनको पता है यहां से ऊपर तो उठो, तब तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो गए, नहीं तो सदा क्या रहेंगे फिर, हैं, मायाभूत दुखी आत्मा, सदा सोचती सदा कांक्षती, फिर सदा सोच में पड़ा हुआ मायाभूत में वो यही लगा हुआ है कि ये है, ये तो उसके संग टच है, कैसे बात कर सकता हूं मुझसे, ठीक है कि नहीं। उधर से उधर हो गया, वो सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मुहावरा है ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ये उसके संग में, ये तो उसके संग में, ये तो उसके संग में है, तो ये क्या इतने संग हो चुके हैं, ये सब एक ही संग में है, सब एक ही जगह कनेक्टेड है सब, ये भावना। इसलिए सबको सुनने के बाद तब आपके अंदर भावना है, और सबको कैसे सुन सकते हो,
इसलिए कभी कभी हम पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्लासों में भी और लोगों को नहीं बुलाते हैं, कुछ 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 लोगों को हम सोचते हैं कि डीबी, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत क्लास में देखिए सब सुना रहे हैं ना, कितने वैष्णव आकर के सुनाते हैं यहाँ पर, आप कितने लोगों को सुनते हो, वो सुनना जरूरी है तो फिर वो भी समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर हम लोग के यही बस यही सुनना है, यही करना है, यही करना है, ये भी एक लिमिटेड बुद्धि है, इसमें भी अपराध ही हो रहे हैं प्रभु जी, और कुछ नहीं है। हमारे तहाते अगर नाम जप में आनंद नहीं आ रहा है तो तहाते अपराध प्रचुर मात्रा में छक करके अपराध हो रहे हैं, तबीयत से दबा दबा के अपराध हो रहे हैं, हर सेकंड हो रहे हैं, हर मिनट कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं अपराध कॉन्शियसनेस हो रहे हैं। जिस दिन हम ये जान जाएंगे ये तो प्रभु का अंश है, मैं इससे नफरत कैसे कर सकता हूं, ये सारे गुणों से विहीन है, लेकिन ये मेरे कृष्ण का अंश है, केवल उनसे दूर होने के कारण ये गुणों से विहीन है, इसको जोड़ दूं तब मेरी कला है ना, इसको हाथ जोड़ के लाऊं, पैर पढ़ के लाऊं, इसके गुणों को बोल के लाऊं, मैं इसको लाऊं यहां, ये प्रचार है सबसे बढ़िया प्रचार। बोलो श्री श्री नित्यानंद राम की, गौरांग महाप्रभु की, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदी।